السلام علیکم ناظرین، میں لباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی تازہ لہر. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعرات کو راولپنڈی سے گلگت بلتستان جانے والی بسوں کو مانسیرا کے علاقے ناران میں روک کر خاص یا مخصوص فرقے، یا واضح لفظوں میں یوں کہا جائے کہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر بسوں سے نیچے اتارا گیا، اور پھر وہی حادثہ سانحہ یا واقعہ دہرایا گیا جو چند مہینے قبل کوہستان کے علاقے میں انجام دیا گیا تھا. اس وقت پورے ملک میں اس سانحے کی مذمت کی گئی تھی اور اس طرح کے سانحے کو روکنے کے عزم کا اعلان کیا گیا تھا. مقتولین کے ورثہ نے جس طرح کے مطالبات کیے تھے حکومت سے، حکومت نے ان کے مطالبات ماننے کی بھی یقین دہانی کرائی تھی. چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا تھا اور راولپنڈی سے لے کر گلگت بلتستان تک کے راستے میں مسافروں کو سیکورٹی مہیا کرائے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور حکومت کی طرف سے بظاہر اس کو تسلیم بھی کیا گیا تھا. کیا اگر سیکورٹی مہیا کرائی گئی ہوتی اور دہشت گردوں پر شکنجہ کسا گیا ہوتا تو یہ واقعہ دوبارہ پیش آتا؟ یہیں پر بات نہیں تھمی. اسی دن کوئٹہ میں بھی دوبارہ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. گزشتہ روز کراچی میں القدس ریلی میں جانے والے لوگوں کی بس کے راستے میں دھماکہ کیا گیا. کل رات بھی کوئٹہ میں دھماکہ ہوا اور آج بھی قمبرانی روڈ پر کوئٹہ میں دھماکے ہوئے. یہ مسلسل جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، آخر کیوں، کیسے اور کیوں کر؟ اور تو اور پاکستان کی حفاظت کی ذمہ دار فوج، اس کی فضائیہ کامرا ایئر بیس پر بھی حملہ کر دیا گیا، تو آخر دہشت گردوں کے سامنے اتنی بے بسی کیوں، اتنی لاچاری کیوں، اور کیوں نہیں دہشت گردوں کو نکیل ڈالی جا سکی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کی سرکردہ تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ. محترمہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ، سب سے پہلے تو میں سانحہ ناران پر آپ کا رد عمل تاثر جانا چاہوں گا. انتہائی دل دوز اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا.
جی بلا شبہ، اس واقعے کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن آپ جو اپنے ابتدائی میں کہہ رہے تھے اور جس میں فرقہ وارانہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں طویل عرصے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو تمام جو فرقے ہیں وہ ایک متحد ہو کے رہتے ہیں. خاص طور پہ شیعہ اور سنی جو ہیں یہ ہمیشہ سے بہت زیادہ اکٹھے رہے ہیں. اور ایک جو بہت اہم چیز دیکھی جاتی ہے، جو شیعہ جو اس میں فقہ میں بہت سی باتیں ہیں، مثلا ہم بات کرتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی، حضرت حسین کی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو سنی جو لوگ ہیں وہ ان کا اسی طرح بہت زیادہ احترام کرتے ہیں. لیکن یہ کچھ واقعات جو اوپر تلے اس طرح کے سامنے آئے ہیں، یہ یقیناً بہت زیادہ افسوسناک ہیں. اور میں یہ اس پہ یقین رکھتی ہوں، جس طرح ہمارے کل وزیر داخلہ نے بھی بات کی ہے، کہ یہ فرقہ وارانہ نہیں لیکن کچھ ایسی کوشش کی جا رہی ہے جو ایک ان کو باہمی جو ہے لڑانے کی سازش ہے. اور اس میں کون ہے یہ میرے خیال میں یقیناً دیکھنا چاہیے، لیکن میں یہ کسی طرح یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ کوئی پاکستانی ہی قوتیں ہیں اور یہ وہ کوئی ٹارگٹ کر رہی ہیں. ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وزیرستان یا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں ان کے کوئی کانٹیکٹس مل رہے ہیں یا کچھ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس چھوٹی سی اس طرح کہہ کے بات کرنے والی نہیں ہے. واقعی اس قدر افسوسناک ہے، خاص طور پہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہمیں بہت زیادہ سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ ویڈیو کس نے یوٹیوب پہ جاری کی ہے، کون سے عوامل ہیں، کون سے عناصر ہیں، کیا اس میں کوئی غیر ملکی عناصر ہیں، کوئی ایجنسیز ملوث ہیں. یہ ہمیں بہت سنجیدگی سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ہم یہ فوری طور پہ کوئی شیعہ سنی کی بات کرتے ہوئے یا اس طرح فرقہ وارانہ کرتے ہوئے اس چیز کو نظر انداز کر دیں. کیونکہ اگر یہ شیعہ سنی بھی ہو تو جس انداز سے کیا گیا ہے ये बहुत संगीन दहशत गर्दी है, ये फिरका वाराना जो है मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि ये वाक्य जो है एक नहीं है, तसलसल से हो रहे हैं जिस तरह आपने खुद भी जिक्र किया है, और ख़ास तौर पर कराची में इस तरह के वाक़ियात, बलोचिस्तान में इस तरह किस्म के वाक़ियात, और ये गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर ये दूसरा वाक़ जो है इसी एक अंदाज का हुआ है। ये इस पर यकीनन हमें मानना पड़ेगा कि लॉ इन्फोर्समेंट की कोताही भी है, वो हम उसको किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर ये हम कहें कि उनकी कोताही नहीं है, एक वाक़ होने के बाद दोबारा होना, वो पहले लोग जो हैं वो क्या गिरफ्तार हो गए थे, उनको क्या सज़ा मिली थी, वो कहाँ तक उसका नतीजा पहुँचा, ये सवाल वो हैं कि जो इस वक्त हर शख्स करता है कि जब पहले ये वाक़ा इसी नौयत का हुआ था, कोहिस्तान का वाक़ा जो था, उसके जो मुजरमान थे उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, वो कहाँ हैं, कि उनको क्या सज़ा हुई, या कुछ ये भी कही जाती है कि हमारे मुल्क के जो कवानीन हैं वो दहशत गर्दों को ज़्यादा उनकी जो है वो अक्सर छूट जाते हैं क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग कवानीन नहीं है, शहादतें इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये तमाम बातें हैं। लेकिन जो वाक़या हुआ है उसकी जिस कदर मजम्मत की जाए, और मैं ये समझती हूँ कि इसने पूरी हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका दिया है, हुकूमत के साथ साथ आवाम को, और ख़ास तौर पे जब यूट्यूब पे इस अफसोसनाक वाक़े की, जिसके अगर कहा जाए कि कोई भी इंसान उसको देख नहीं सकता, जो तकलीफ दे सूरत हाल है, उस वाक़े की जो सूरत हाल वहाँ पैदा हुई है और उसको यूट्यूब पे देने का, ये कोई भी फिक्का वाराना में नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो कोई ट्रेंड दहशत,
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मदर, मैं फिर आ जाऊंगा जी। यहाँ पर फिरका वाराना दहशत गर्दी की इस्तेला इस्तेमाल की जा रही है, ना कि फिरका वाराना लड़ाई, पाकिस्तान में यकीन तौर पर फिरका वाराना हमांगी है, लेकिन ख़ास मसलक के लोगों को ये कहकर कि ये शिया हैं, इनको मारना सवाब है, इनको मारना जायज़ है, तो जाहिर है कि ये फिरका वाराना दहशत गर्दी है, और कोई भी सुन्नी मुसलमान किसी भी शिया मुसलमान को मारना जायज़ नहीं समझता। तो यहाँ पर यह बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान में सुन्नी और शिया का कोई मसला नहीं है, ये तकफीरी सलफी और इस्तेकबारी एजेंटों का एक अलग से बनाया हुआ अपना उनका मजहब है, जिसे हम इस्लाम अमेरिकाई तो कह सकते हैं, इस्लाम वाकई नहीं कह सकते। ये उन लोगों का काम है जो मुसलमानों के दरमियान, शिया और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान तफरका फैलाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करते हैं और उसको इस्लाम और मुसलमानों का नाम देते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर यह कहने का था, और जिस तरह से मोहतरमा फौजिया शाही साहब ने फरमाया, बजा तौर पर फरमाया कि पाकिस्तान में सुन्नी शिया का मसला ना तो कल रहा है और ना आज है। बहरहाल चलते हैं इस वक्त शुमाली इलाका जात, जहाँ पर टेलीफोन लाइन से मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पर उसी इलाके के मुमताज समाजी कारकुन और सियासी रहनुमा जनाब सईदुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम।
सईदुल हसन साहब, अब तक की क्या खबर है और इलाके की सूरत हाल कैसी है?
जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा होगा और मसलन 40 मीडिया ने सारी चीजें कवर की हुई हैं, गुज़श्ता जो दिलखराश वाक़या 17 अगस्त को हुआ है सानिया बाबूसर का, बाबूसर के करीब और इलाज से तकरीबन कोई पौने घंटे के फासले पर हुआ ये वाक़या जो है वो, तो उसकी 14 की लाशें जो है वो आपने अपने मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। कल तदफीन, दो शहीदों की तदफीन आज हुई है, एक दनियोर में, अपना नगर में, ये सारी चीजें तो कम्प्लीट हो चुकी हैं। अलबत्त इस जमीन में कुछ मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि तसलसल के साथ महीनों में कोई 60 के करीब शिया मुसलमानों को सिर्फ शनाख्त की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड चेक करके बसों से नीचे उतार के शहीद किया गया उस खत्ते में। जैसा कि मोहतरमा ने जिक्र भी किया कि यूट्यूब में क्लिप भी, इस वक्त वीडियो क्लिप भी आ रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ की मुकामी इंतजामिया और वफाकी इंतजामिया जो है वो, क्योंकि तसलसल के साथ 30 जुलाई और 12 अगस्त को कुछ लेटर्स भी निकले हैं वजारत दाखिला की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को भी, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखने के बावजूद यहाँ की मुकामी इंतजामिया और वफाकी इंतजामिया, खासकर स्पेशली एजेंसियां जो हैं वो टसमस नहीं हुई, और इस रोड को जो कि खूनी चेहरा जो है वो बन चुका है, इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी बिना पर आज ये तीसरा बहुत बड़ा वाकया गिलगित की तारीख, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का जो है वो रुनमा हो चुका है। और आपके मसलन उसमें नालिश में लाऊं, एक हफ्ता पहले गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का पहला रिमोट कंट्रोल बम हमला जो है वो यहाँ की एक शियाबादी लोकल आबादी है हरामुश की दैनिक वेगंज हाइया से जा रही थी, उस पर रिमोट कंट्रोल बम अटैक किया गया। खुशकिस्मती से उसमें एक शहीद और कुछ जो है वो अफराद जख्मी हो गए, हाइस जो है वो बच चुकी। कहने का मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत और यहाँ की मुकामी इंतजामिया, इनकी अजीब व गरीब पॉलिसी इस खित्ते के अनुमान से है। पाकिस्तान में एंटी तालिबान मूवमेंट चल रही है, पूरे आर्मी हो या एजेंसियां हो या हुकूमत की मसलन चंद को हटा के, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली प्रो तालिबान पॉलिसियां चल रही हैं जिसकी बिना पे यहाँ मुसलसल शियों का कत्ल आम हो रहा है। क्योंकि आज तक हमने देखा है इन तीन बड़े वाकयात के बाद, दो बड़े वाकयात पहले हुए, गिलगित बल्तिस्तान की तशय्यो मिल्लत तशय्यो ने रोड पे आई, मुतालिबात की, कोई एक मुतालिबा सिवाय कंपनसेशन के कोई एक मुतालिबा जो हल नहीं हुआ है, न रूट को महफूज बनाया गया, न C-130 सर्विस शुरू की गई, ना उनके लवाहकी उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज का कहा गया था वो दिया गया, ना हमारे मुतबादिल रूट्स का हमने मुतालबा किया था उसको उसकी तरफ मसलन गौर किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ की इंतजामिया और वफाक ने इस खत्ते में स्पेशली प्रो तालिबान जो है वह कंपेन चलाई गई। और दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ सुनिशिया मसला जो आपने भी कहा और मोहतरमे ने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है सुनिशिया, यहाँ एक मखसूस तकफीरी फिरका है, मखसूस दहशतगर्द गुरोह है जिसका एजेंडा है, स्पेशल एजेंडा इस खत्ते में एक तो चाइना यहाँ पे लगा हुआ है, जिस तरह ईरान के बॉर्डर को डिस्टर्ब किया जा रहा है इस वक्त, वहां के शियों का कत्ल आम किया जा रहा है और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साइड पे शियों का कत्ल आम हो रहा है। ये सबसे हसास एरिया गिलगित बल्तिस्तान का, जहाँ बहुत बड़ी स्टेट जो है वो इंटरनेशनली यहाँ सरहद लगी हुई है, इनको डिस्टर्ब करने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के दोस्तों को डिस्टर्ब करने के लिए अमेरिकन एजेंडे पे इस वक्त काम हो रहा है, जिसका शख्साना अमेरिका से मिलता है, CIA से मिलता है, और यहाँ उनके कारिंदे जो है वो तालिबान की शक्ल में, तकफीरी ग्रुप्स की शक्ल में काम कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ। चलते हैं लाहौर, जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज और मारूफ आलिम अहले सुन्नत मौलाना जावेद अकबर साकी साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मौलाना साहब, कोई भी मुसलमान, किसी भी मुसलमान का किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में और किसी भी सूरत में किसी भी महीने में किसी भी हाल में खून नहीं बहा सकता, और वो भी माह मुबारक रमजान में, क्या ये लोग मुसलमान हैं?
मैं समझता हूँ ये वाकया जो रूनमा हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन बाब है, और इसमें जो गिलगित का और बसों से उतार कर जिस तरह बेगुनाह मुसलमानों का इस माह सियाम में, इस मुकद्दस मुबारक महीने में जिस तरह बेदरेक कत्ले आम हुआ है, यकीनन ये किसी एक फर्द का, एक मिल्लत का या एक मसलक का नुकसान नहीं, बल्कि ये पूरी उम्मत मुसलमा का मुश्तरक का नुकसान है। और यकीनन इस माह मुकद्दस में और कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो वाज़ेह इरशाद है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ले आम किया। मैं समझता हूँ ये इंसानियत के कातिल हैं, और जिन्होंने कामरा के अंदर भी कल हमला किया और यौमुल कुद्स के हवाले से रैली के अंदर जो बस बम धमाका किया जिसमें मासूम बच्चे बेगुनाह शहीद हुए, ये इस तरह के वाकयात ये कोई पहली दफा नहीं हुए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख है। अगर आप माजी की तरफ देखें तो ये मुसलसल एक दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान बनते हुए पाकिस्तान के क्याम के वक्त भी इस पाकिस्तान के मुखालिफ थे, और वो शुरू दिन से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी मुस्तहकम ना हो। वो कभी लिसानियत के नाम पर झगड़ा कराते हैं, कभी कौमियत के नाम पर, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए और इस्लाम के जो तमाम मकातिब फिक्र हैं जो आपस में भाई भाई हैं उनको लड़ाया जाए। जब वो इन चीजों में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने पाकिस्तान में अपने बैरूनी आकाओं के इशारे पर और खसूसन शैतान बुजुर्ग अमरीका की उन पॉलिसियों को अमली जामिया पहनाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को बिलखसूस शिया सुन्नी मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की, और जब वो इस चीज में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मकातिब फिक्र के जो आलम दीन जो मोहतरम कायदीन थे जिनमें मेरे वालिद गिरामी मौलाना अकबर साकी ने तहरीक वादत इस्लामी की बुनियाद रखी, और उस वक्त पाकिस्तान में शिया जो लीडर्स और शिया अमायदीन थे जिनमें अलहाज हैदर अली मिर्जा साहब थे, जनाब अलहाज अली मोहम्मद ख्वाजा साहब थे, मुजफ्फर अली शमसी साहब थे, ये बुजुर्ग अकाबरीन और मुफ्ती सैयद जाफर हुसैन शाह साहब से, फिर शहीद अलामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी की जात जो है वो मैं समझता हूँ एक वादत के हवाले से एक मिसाल है अपनी जात के हवाले से। उन लोगों की काबिशों से पाकिस्तान में ये फिरका वारियत फैलाने में नाकाम रहे, फिर इन्होंने जब नाकामी देखी तो फिर इन्होंने दहशतगर्दी का सहारा लिया, फिर दहशतगर्दी का निशाना इमाम बारगाहों को बनाया गया, फिर मसाजिद को बनाया गया, फिर जनाजों को बनाया गया, कब्रिस्तान, मार्केट, हॉस्पिटल को बनाया गया, और अब ये पाकिस्तान में मजारात जो औलिया इकराम के मजारात हैं उनको भी निशाना बनाकर मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान के लिबादे के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। पूरी दुनिया इस वक्त जितने मुस्लिम ममालिक हैं, मैं समझता हूं कोई भी मुसलमान एक बेगुनाह के कत्ल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये इस्लाम के लिबादे में चाहे कोई भी है, किसी भी मसलक का है, बिल्कुल वो एक गलत सेल सर अंजाम दे रहा है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता। ये इस्लाम दुश्मन कुवतों के एजेंट है जो मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं।
शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा।
पाकिस्तान के जितनी हुकूमतों को क्या पता नहीं है, क्या एजेंसी को पता नहीं है ये कौन लोग हैं? मैं समझता हूँ जब से एक हुकूमत पंजाब के किसी जिम्मेदार की वजह से एक दहशत गर्द को रिहाई मिली और उस दहशत गर्द की रिहाई के बाद ये फिर काफरिस्तान के नारे, ये काफर काफर की फैक्ट्रियां, कुफर के फतवे फिर आना शुरू हुए, फिर गली कूचे में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ। आज एजेंसी को पता है कि इनका कातिल कौन है। आज देखें, मरने वाला सुन्नी है, मरने वाला शिया है, मरने वाला चर्चेज क्रिश्चियन है, मरने वाले हिंदू है, दीगर मजाहब के लोग हैं, हत्ता के मिर्जाइयों की इबादतगाह पर भी हमला करके कत्ल किया गया। मरने वाले अलहदा अलहदा फिरके, अलहदा अलहदा मजहब के लोग हैं, लेकिन मारने वाला एक गिरोह है जो हुकूमत को पता है। आज हुकूमत को फौरी इंतजाम करना चाहिए और इन दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इबरनाक मिसाल बना देनी चाहिए ताकि किसी दहशत गर्द को आइंदा ऐसे वाकयात की जरूरत ना हो।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा। मोहतरमा, जो मौलाना की गुफ्तगू से बात निकल के सामने हुई ये कि हुकूमत चाहे तो दहशत गर्दों की शनाख्त आसानी से कर सकती है, और वो भी ऐसे वाकये में कि इत्मीनान से बसों को रोका जाता है, बसों पर चढ़कर एक एक आदमियों का शनाख्ती कार्ड देखा जाता है और फिर उनको नीचे उतारा जाता है और जो उनके टारगेट होते हैं उनको शहीद किया जाता है और फिर बकिया मुसाफिरों को छोड़ दिया जाता है। क्या मुसाफिर या ड्राइवर इन लोगों ने दहशत गर्दों को नहीं देखा होता है? क्या वो दहशत गर्दों को नहीं पहचानते? क्या हुकूमत और एजेंसियां इनकी मदद से ऐसे लोगों की शनाख्त नहीं कर सकती? क्या इन लोगों को गिरफ्तार करके निशाने इबरत नहीं बना सकती?
देखिए वैसे ये किसी तरह भी जो है हुकूमत की इस सिलसिले में मैं समझती हूँ कि जो कोताही है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए जिस तरह ये कत्ल किया गया है ये कोई चंद लम्हों की बात नहीं है, एक इसका प्रोसेस बहुत लंबा है और अगर ये टाइम तो मुझे ठीक तो पता नहीं है, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो इतने लोग कत्ल किए गए और जिस तरह चेक किया गया, उनके कार्ड चेक किए गए, नाम चेक किए गए और उसमें ये भी आया कि दो जो है उसमें अहले सुन्नत थे और अहले सुन्नत ये थे कि उनके कुछ नाम इस किस्म के थे जो अहले तशीह से कुछ मिलते थे, वो भी इसमें जो है वो भी शहीद किए गए। मकसद सिर्फ ये है कि ये प्रोसेस जो है वो कई घंटे पे वहीद होगा, ये नहीं है कि चंद लम्हों में कोई इस किस्म का वाक्य हो गया। जो दहशतगर्दी के दूसरे वाक्यात होते हैं जिसमें कोई धमाका हो जाता है या कुछ होता है वो एक लम्हे की बात होती है, जिसमें हुकूमत को बाज़ औक़ात हम इसलिए भी उसको जिम्मेदारी से बरी जिम्मा करार दे सकते हैं कि वो एक सुइसाइडल है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, जो एक शख्स आया ही मरने के लिए है या शहादत का नाम लेके आ गया या जहाद का नाम लेके आ गया, आप उसको नहीं रोक सकते। उसमें तो हम हुकूमत को बाज़ुकात समझते हैं कि वो उसको बरी जिम्मा करार दे देते हैं, लेकिन ये जो वाकया है जिस ये दूसरी नोयत का वाकया है इसमें जिसमें बसेस चार बसेस रोकी गई हैं, ऊपर तले एक बस भी नहीं है, चार बसेस रोकी गई हैं, सबके शिनाख्ती कार्ड चेक किए गए हैं। उसमें एक जो वीडियो बहुत ज़्यादा चली है, मैं उसको बिल्कुल एतराफ़ करती हूँ कि मैं इस किस्म की वीडियो नहीं देख सकती और इंसानियत की तजलील जो है वो ज़ाहिर है कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि एक बुजुर्ग शख्स हैं जिनकी तजलील की गई और उनको ये देखा गया कि वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये एक इंसानियत सोच जो बात है, ये एक तवील वक्त उसने लिया है और तवील वक्त में क्या वहाँ कोई फोर्सेस मौजूद नहीं थी? ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आ गए, अचानक फिर गायब कहाँ हो गए इतने लोगों को कत्ल करने के बाद? ये बहुत संजीदा सवाल है, इसको फौरी तौर पे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मैं इस पर यकीन रखती हूँ कि ये ना तो मुसलमान है, और अगर ये मुसलमान है, अगर ये मुसलमान है जिसके मैं यकीन नहीं रखती, तो हमारे उलमा इकराम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क में हकीकी इस्लामी तालीमात क्यों नहीं दे सके। मदारिस की बात की जाती है तो मदारिस में तालीम क्यों नहीं दी जा सकी? मदारिस में क्या वजह है कि इस किस्म के एक जहन पैदा कर दिए गए। हमारे यहाँ देखिए बहुत बड़ा अलमिया है, ये आज की बात नहीं है, हम पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से ये सूरत हाल से इस दो चार है। ये मदारिस में जो कुछ हो रहा है या मदारिस कहाँ से इब्तदा हुई ये भी हमें देखना पड़ेगा। ये हम हमारे जो अरब मुल्क हैं जहाँ से ये आके मदारिस को फंडिंग होती है, इसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें देखिए बहुत संजीदा हैं, यहाँ हम बैठ के बात कर सकते हैं, बहुत सी चीजों को कर ले सकते हैं, लेकिन ये है कि इसको हम किस तरह नजरअंदाज करेंगे कि ये आपके मदारिस जो है पूरे जिस मुल्क में जो जाल बिछ गया है, वहाँ मदारिस हमेशा रहे हैं, वहाँ तालीम दीनी तालीम दी जाती रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो जहाद के नाम पे जो 1979 में खास तौर पे एक मकसद के लिए मदारिस खोलेंगे और उसका एक तसस्सुस जो है पूरी एक पूरे मुल्क में उसकी जाल बिछा दिया गया, वहाँ क्या तालीम दी जा रही है, वहाँ से क्या हुकूमत जो है उनसे कितनी वाकिफ है, वहाँ कितना कोई असला मौजूद है, क्या है, ये तमाम चीज़ें हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमन अमान कायम करना, हर शख्स का जिंदगी का तहफ़ जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई इसमें जिम्मेदार नहीं है। अगर रहमान मलिक जो वजीर दाखिला हैं आके बात करते हैं तो उनको भी इस चीज़ का बिल्कुल इदराक होना चाहिए कि वो किस मुँह से आके बात करते हैं कि इतने लोग कत्ल हो जाएं और वो आसानी से आके कहें कि जी हम उनको पकड़ लेंगे कर लेंगे, ये उस मौके पे कहाँ थे। और ये रास्ता जो है एक ही सड़क है, ये कोई ऐसा पेचीदा रास्ता नहीं है, जहाँ ये बसें जाती हैं वहाँ कोई बड़ी चौड़ी सड़क नहीं है, कोई बहुत बड़े रास्ते नहीं है, कोई बेशुमार रास्ते नहीं है, एक ही सड़क है जो इस रास्ते को जाती है। और उस सड़क पर निगरानी अगर वो इसकी आगाज किया गया था तो वो निगरानी क्यों खत्म की गई, सर्वेलेंस क्यों खत्म की गई, ये बहुत से सवाल आते हैं।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर
नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये बात हमारे लिए काबिले इत्मीनान ये है कि यहाँ शिया सुन्नी के दरमियान कोई ऐसे मनफी जज्बात नहीं पाए जाते जो हम इसको इत्मीनान बख्श समझते हैं। लेकिन ये फोर्सेस चाहे उसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिये मैं हमेशा ये बात करती हूँ, लोग शायद इसको बुरा बनाते हैं, लेकिन ये है कि सबसे बड़ा दहशतगर्द तो ये जो ट्रेनिंग देने वाला है इस किस्म की, मैं इसको अमेरिका को समझती हूँ। अमेरिका ने यहाँ मुकम्मल तौर पे बुनियादी इंसानी जो हमारे तकाजे हैं उसको खत्म कर दिए, हमारे मजहबी तकाजे खत्म कर दिए।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में।
हमारा दीन तो जो कहता है कि एक शख्स का कत्ल जो है इंसानियत का कत्ल है, तो हम तो इस तालीमात के कायल है, तो ये तालीमात किसने दी कि हमने एक दूसरे को कत्ल करना है, मारना है। और जिस तरह मारा जाता है ये एक ट्रेंड लोग मारते हैं, ये आम इंसान नहीं कर सकता, आम इंसान एक से दूसरा शख्स कत्ल नहीं कर सकता। एक जब इतनी बड़ी तादाद 20-25 शख्स जो कत्ल होते हैं ये एक बहुत बड़ा मुनज़्म दहशतगर्द ग्रो ही कर सकता।
जी मोहतरमा, मैं फिर हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में, इजाजत दीजिए मुझे। जी सईदुल हसन साहब, आप देखें कि जब सानह कोहिस्तान पेश आया था उसके बाद उसी के कुछ ही हफ्तों के बाद कुछ बसें भी अगवा की गई थी और लोगों को गिरफ्तार करके शहीद किया गया था, तो उस वक्त बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था पूरे शुमाली इलाका जात में, गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू वगैरह वगैरह में, और काफी दिनों तक तो यह एहतजाज चलता रहा। चार्टर ऑफ डिमांड आप लोगों ने पेश किया था 8 निकाती, तो उस पर किसी हद तक अमल हुआ, कुछ मुतालबात पूरे किए गए, कुछ माने गए, और अगर नहीं तो अब आप लोगों की क्या आइंदा की हिकमत अमली होगी इस तरह की सूरत हाल के पेश नजर?
अच्छा, यह तो मैंने पहले भी जिक्र किया था, सानिया कोहिस्तान और चिलास के बाद कुछ मसलन हमारा चार्टर ऑफ डिमांड आ चुका था, 10 दिन का मुसलसल यहाँ पे एहतजाज हुए, सराबा एहतजाज भरी पूरी मिल्लत तशय्यो, उसके बाद वजीर दाखिला यहाँ पे आए और कुछ चार्टर ऑफ डिमांड हमारी तरफ से दिए गए, उस पे अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई, कुछ मसलन आर्जी तौर पे उसको महफूज बनाने के लिए कुछ बसों में 1-2 पुलिस रखना शुरू किया, 1.5-2 महीने के बाद वो सिलसिला जो है वो खत्म हुआ। फिर सानह चिलास का वाकया रोनमा हुआ, सानह चिलास के फौरी बाद फिर 10 दिन के लिए पुलिस रखी गई, फिर सिलसिला जो है वो खत्म हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि चार्टर ऑफ डिमांड के जो 8 नुकात थे उनमें से सिर्फ एक पे अमल हुआ है, वो शहदा के लवाहिकीन को कंपनसेशन दिया गया है बस, जस्ट, बाकी कोई एक बात भी यहाँ से उस पे अमल दरामद नहीं हुआ है चार्टर डिमांड पे। 7/3 का हमारा मुतालिबा था कि यहाँ के शिया आबादी को स्पेशली और गिलगित बल्तिस्तान की पूरी आबादी को बिलअमूम इजी सर्विस के लिए रियायती किराए पे 7/3 सर्विस जो है वो शुरू किया जाए और एयरपोर्ट की तोसी करके ऑल वेदर बनाया जाए। उसके अलावा कुछ मुतबादिल रास्तों का ऑप्शन दिया गया था, एक तो चाइना रूट को जो है वो ऑल वेदर करना, और फिर कारगिल रूट जो इंडिया की तरफ जाता है, जहां हमारी माशी इकोनॉमिकली एक्टिविटी हमारी कदीम जमाने से जारी थी, उस रूट को जो है वो बंद किया गया है। तो हमारी ख्वाहिश थी कि उस रूट को भी खोला जाए, ताकि यहाँ की मजलूम जो शिया आबादी हो, जो पिंडी जाती है अपनी माशी सरगर्मियों के लिए, अपनी तालीमी सरगर्मियों के लिए, अपनी सेहत के मसाइल को हल करने के लिए, सारी चीजें अब चूंकि खूनी चारा बन चुका है, इस पे होना मुमकिन नहीं है। तो हमें अल्टरनेट रूट देना, उस पे इत्मीनान मुतालिबा भी हमारा हक है, और गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि अल्टरनेट रूट का हमें जो है वो तायुन करके दे दे, उनमें से हमने ऑप्शन जो है वो दिया हुआ था। एक दूसरी बात मैं यहाँ पे एक तस्करा करना चाहता हूँ, ये वाकया भी सैन्य कोहिस्तान की तरफ बिल्कुल सेम हुआ है। मसलन फौजी वर्दी में आए हैं, उसमें पुलिस वर्दी में आए थे, इसमें फौजी वर्दी में 30 से 40 अफराद थे, उन्होंने गाड़ियों को रोका है, शनाख्त करके जो है वो शहीद किया है। मैं एक और बात तस्करा करना चाहता हूँ कि एक अननोन ग्रुप ने, तालिबान ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। हमारा कहना यह है कि अननोन ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस वाक्य से हमारी तवज्जो हटाने के लिए एक अननोन ग्रुप का जो सामना लाया गया है। ये टोटली मुकामी तालिबान है, इनके ताने बाने शुमाली वजिस्तान से मिले हुए हैं और अमेरिका से इनकी ताने बाने जो है वो मिले हुए हैं। हमने पहले भी कहा था, आज भी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त नया मरकज बनता जा रहा है तालिबान का, अलकायदा का, दहशतगर्दों का, क्योंकि मुसलसल तसलसल के साथ यहाँ पर वाकयात हो रहे हैं और नई अजीब गरीब किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं। चूंकि छोटा सा खत्ता है और आबादी महदूद है, यहाँ की अक्सर आबादी अहले तशी की है, हर नया आने वाला बंदा पहचाना जा सकता है कि ये कहाँ का है। तो अजीब गरीब चेहरे इस खत्ते में नजर आने लगे हैं। तो शुरू से बताया गया एजेंसियां जो है वो इसको वॉच भी करती है, लेकिन इसकी बिना पे यहाँ की आबादी जो है वो जेर आताब है।
सईदुल हसन साहब, मुझे याद है कि सानह कोहिस्तान के बाद या जलास के बाद जो एक वफ्द मिला था गिलगित और बल्तिस्तान के अकाबरीन का और उलमा का और सियासी रहनुमाओं का वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब से, तो उस मुलाकात में खुद रहमान मलिक साहब ने इतराज़ किया था कि गिलगित के इलाके में कलदम तंजीमों के तरबियती कैंप हैं, लेकिन हम उनको ख़त्म नहीं कर सकते। यानी हुकूमत क्या इस तरह के छोटे मोटे दहशत गर्दों के कैंप को भी ख़त्म करने से आजिज़ है?
जी, लगता तो ऐसा है कि यहाँ की हुकूमत जो है इंतहाई जो है वो आजिज है, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इस हुकूमत में, ये कुछ भी नहीं कर सकती है। ये मेरे ख्याल में कोई एक छोटे से पब्लिक स्कूल का मसला हल नहीं कर सकती है, इतना बड़ा मसला जो है वो कुजा इनसे हल होगा। हमारी तो मन शुरू से ये डिमांड रहा है कि चूं इस खत्ते के लोगों को जब तक आप जो है वो ताकत नहीं देंगे, इस खत्ते के लोगों को आप सियासी तौर पर ताकतवर नहीं बनाएंगे, इस खत्ते के लोगों को माशी तौर पर आप ताकतवर नहीं बनाएंगे, जो कि 67 सालों से बदकिस्मती से इस खत्ते को बहुत बैकवर्ड रखा गया है, माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, सियासी तौर पर। इस मानन 21वीं सदी में बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता है कि यहाँ के लोगों को वोट का हक नहीं है, हम अपना असेंबली का मेंबर नहीं चुन सकते हैं, कौमी असेंबली का, सेनेट का मेंबर नहीं चुन सकते हैं। तो ना वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म हो या सदर पाकिस्तान हो, उनकी कोई मजबूरी नहीं, ना वह किसी वफाकी पार्टी की मजबूरी, हम मजबूरी नहीं है उनकी, चूंकि हम वोट देते नहीं है उनको। अगर वोट देते तो उनकी मजबूरी होते, वो हमारा मसला हल करते। तो हमारा शुरू से ये डिमांड रहा है कि इस खत्ते को आईनी जो है वो सूबा डिक्लेयर किया जाए, अगर नहीं हो सकता है तो खुदा रहा इस खत्ते को, मतलब इस खत्ते के लोगों पर रहम करें, या कम से कम जो है आजाद कश्मीर तर्ज का सेटअप दे दें, ताकि यहाँ के लोग जो है वो मजबूत हो सियासी तौर पे और खुद इन दहशतगर्दों का जो है हमारे हाथ बांधे गए हैं, हमसे वसाइल छीने गए हैं, हमसे इख्तियार छीना गया है, बाहर से लोग आके यहाँ पे मुसल्लत हैं,
आप
जो चाहे जो जी में आए वो करती है
जी। क्या अपनी हिफाजत आप करने के ताल्लुक से कोई हिकमत अमली आप लोगों ने अपनाई है कि इस तरह का वाकया फिर दोबारा रूनमा ना हो, या इस सानहे के बाद आप लोग सर जोड़कर बैठे कि आइंदा क्या सूरत हाल हो और इसके सिलसिले में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए?
यकीनन ये हर बंदे का हक है कि अपने अपने उस दिफा के बारे में सोचे, अपने हकूक के बारे में सोचे, अपनी आवाज बुलंद करे। ये मेरे ख्याल में हर का हक है, ये हमारा आईनी और हमारा शरी और हमारा अखलाकी जो है वो हक है, इससे हमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता है। अगर तसलसल के साथ हमारा कतलाम जारी रहा, तसलसल के साथ हमारा माशी कतल जारी रहा, तसलसल के साथ हमारा जो है तालीमी कतल जारी रहा, तो लामहाला हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। ये यहाँ की एजेंसियां देखें, हुकूमत देखे, पाकिस्तानियत से महान,
मेरा मकसद ये पूछने का है कि
वो देखें,
मेरा मकसद
आया हमारे मतलब जीवन है या नहीं,
मेरा मकसद सिर्फ पूछने का ये है कि इस तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए या मुसाफिरों की हिफाजत के लिए अगर पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है तो आप लोग किस तरह से बचेंगे? इस सिलसिले में कुछ हिकमत अमली आप लोगों ने तैयार की? ये मेरा मकसद पूछना
जी, सवाल समझ में नहीं आया, आवाज कम आ रही।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए आइंदा आप लोगों ने क्या सोचा है कि क्या करना चाहिए कि फिर इस तरह की तकरार ना हो वाकयात की?
हमने एक मुकम्मल सियासी जो है प्लान बनाया हुआ है। हमने ईद से इंशाल्लाह जिसका इसका आगाज करना है, हमने बहुत बड़ी जो है वो जलसे का, चूंकि ईद को हमने एज ए सोग मनाने का ऐलान किया है, यहाँ जो अकवाम मुत्तहिदा का ऑफिस है हमने वहां तक मार्च करना है और हमने अपनी याददाश्त अकवाम मुत्तहिदा में दाखिल करना है। और हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल जो इदारे हैं, OIC हो, अकवाम मुत्तहिदा हो, जितने भी इंटरनेशनल आलमी क्या कहते हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं नाम निहाद, उन सब तक हम रब्ता करेंगे और अपना जो है वो मुद्दा, अपना जो है वो हक लेने के लिए उनसे जो है वो रब्ता करेंगे। और इंशाल्लाह इसका आगाज हम जो है वो ईद के दिन से कर रहे हैं। अकवाम मुत्तहिदा के ऑफिस तक हमारा बहुत बड़ी रैली निकलेगी, बहुत बड़ा एहतजाज है और हम वहाँ पे अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे और याददाश्त जो है वो हम जमा करवाएंगे। हमने अपने सियासी लाहेमल का आगाज जो है वो सियासी अमल तरतीब दिया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम ईद उल फितर से इसका जो है वो आगाज करें, क्योंकि अब हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमारा तसलसल के साथ कत्लेआम हो रहा है, महीने में एक दो वाकयात यहाँ पे होते हैं, कोई ना कोई किया जो है वो कत्ल होता है दर्जनों के हिसाब से, कभी एक, कभी बम धमाका, कभी टारगेट किलिंग, इसी तरह। और हम यहाँ ऑफिस में हमारा जो कत्लेआम हो रहा है माशी तौर पर, हमारी तालीमी तौर पर जो कत्लेआम हो रहा है वो उससे बईद है, वो मीडिया में आने वाली चीजें नहीं है, ये मीडिया में आती भी नहीं है। इन तमाम चीजों को हमें मद्देनजर रखते हुए हमने अपने सियासी जो है प्लान का जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से ले लेंगे, अपने तमाम इंटरनेशनल इदारों में अपनी आवाज जो है वो पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह हम मजबूर करेंगे पाकिस्तान को हमारे हकूक दे और ये रूट हमारे लिए महफूज बनाए।
जी टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। मौलाना साकी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसा की अभी मोहतरमा फौजिया शाही साहबा फरमा रही थी कि उलमाए कराम को, अकाबरीन मिल्लत को, अमायदीन कौम को आगे बढ़ना होगा ताकि इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो रही है इससे बचा जाए, इसको रोका जाए। अगरचे पाकिस्तान में शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी जो इस तरह के मसले की बुनियादों पर कत्ले आम के वाकयात हो रहे हैं इसको रोकने के लिए बहरहाल उलमाए कराम को और अमायदीन मिल्लत और अकाबरीन कौम को आगे होना आना होगा। इस दरमियान अफसोस की बात यहाँ पर यह है मौलाना साहब के बाद मजहबी जमातें जिनका नाम भी है, जिनका शोरा भी है, इस तरह के वाकयात की खुलकर मजम्मत नहीं करती, क्यों आपके ख्याल?
मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कोई हुकूमत का फर्ज नहीं बनता, इस माशरे में बसने वाले हर फर्द का ये फर्ज बनता है कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ किरदार अदा करे। हुकूमत के साथ साथ सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी आयद होती है वो उलमा और मशायख पर आयद होती है, जिनके मानने वाले हजारों की तादाद के अंदर अफराद हर जगह मौजूद हैं, और बेखसूस खुतबा जुमा एक ऐसी पावर है उनके पास कि जिसमें लाखों अफराद, हजारों अफराद जो हैं उनके खिताबात को सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उस पर अमल पैरा होते हैं। तो आज तमाम मकातिब फिक्र के उलमा पर यह फर्ज रहता होता है कि वो अपने खुतबात के अंदर दहशतगर्दी में और जिहाद में वाज़े फर्क बताएं कि जिहाद क्या है और दहशतगर्दी क्या है। आज बिलखसूस जरूरत समर की है कि उलमा जो है, और मैं खसूसन पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान और मौलाना समीउल हक साहब से अर्ज करूंगा कि अगर आप अमन के मतलाशी हैं, आप वजीरिस्तान का रोना रो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज भी लाल मस्जिद की बात करते हैं, आज भी अमन की बात करते हैं कि जी अमन उस वक्त तक किसी माशरे में कायम नहीं रह सकता जब तक कातिल और मकतूल में फर्क वाजे न किया जाए, जब तक जुल्म और जालिम के दरमियान तफरीक न की जाए, जब तक नेकी और बदी के दरमियान लोगों को न बताया जाए, उस वक्त किसी माशरे में अमन कायम नहीं हो सकता। एक दहशतगर्द गिरोह है जो मेरे मुल्क के अंदर इस्लाम का लिबादा उड़कर, इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो किसी फिरके के हैं, सारी दुनिया के सामने वो अया हो चुके हैं, वो कौन से अनासर हैं। आज बिलखसूस इन दीनी कायदीन को चाहिए, और आज ये बिलखसूस मैं हुकूमत से भी कहूंगा कि ये जमातें जो आज एक दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के नाम पर मार्द वजूद में आकर फिर एक नया झंडोटा भी, और बदकिस्मती देखें कि इस दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के अंदर देख लें ये कौन लोग हैं दिफा करने वाले, जितनी तंजीमें हैं वो पाकिस्तान की मुखालिफ तंजीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी, जिनको हुकूमतों ने कलदम करार दिया, आज वो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की छतरी का सहारा लेकर एक मरतबा फिर मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए मैदान में आ गई हैं। मैं समझता हूं कि आज हुकूमत को इन लोगों पर नजर रखनी चाहिए, बिलखसूस कलदम तंजीमें जो हैं जो इस मुल्क के अंदर मजहब के नाम पर मुसलमानों को लड़ाकर कत्लेआम करवा चुकी हैं, करवा रही हैं और करवाने का इरादा रखती हैं, उन तंजीमों पर नजर रखनी चाहिए, उनके कायदीन को बिल्कुल उनकी हरकत तो सकनात पर नजर रखकर उनकी कार्रवाइयों को कंट्रोल करना चाहिए। आज मैं कहूंगा कि हुकूमत पंजाब के एक मिनिस्टर ने जिस तरह कलदम तंजीम को और उसके एक दहशतगर्द जो 130 अफराद का कातिल है, जिसकी जमानत है, और खसूसी तौर पर मैं आज मीडिया के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब की खिदमत में कर्ज करूंगा कि चौधरी साहब आपको पूरी कौम ने आजाद अदलिया के तौर पर चीफ जस्टिस बनवाया, आजाद अदलिया बहाल करवाई। इस मुल्क में शिया सुन्नी मुसलमानों ने आपके लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन खुदारा चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब कातिल में और मकतूल में फर्क जरूर करें, दहशतगर्द में और अमन पसंद में फर्क जरूर करें। यह वाजे करना चाहिए कि दहशतगर्द कौन है। आज मुझे दुख से कहना पड़ता है कि एक औरत को अगर एक सही आजादी थप्पड़ मारती है तो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद में बैठकर उस थप्पड़ का नोटिस ले लेते हैं, लेकिन 25 अफराद को शिनाख्ती कार्ड देखकर, कमीजें उतार कर, उनकी जंजीरों को देखकर गोलियां मारी जाती है। क्या चीफ जस्टिस साहब की नजरों से ये वाकयात नहीं गुजरे? क्या चीफ जस्टिस साहब को केटा के बेगुनाह मुसलमानों का कतलेआम नजर नहीं आता? आज क्यों खामोश है? मैं सिर्फ, मेरा सवाल इतना है कि इस मुल्क में इस चीफ जस्टिस के लिए और आजाद अदलिया के लिए हर मसलक के लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी अदलिया क्यों खामोश है। ये सवाल पूरी कौम के लिए लमाए फिक्रिया है। मैं आज ये समझता हूं कि उलमा व मशायख को मैदान अमल में निकलना चाहिए। मिली यकजहती कौंसिल, मुतहदा मजलिस अमल, इससे पहले तंजीमें मारे वजूद में आ चुकी हैं, लेकिन आज इस मुल्क में बादतुल मुस्लिमीन की तंजीम मौजूद है, अलावा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी जैसे शिया कायदीन मौजूद है इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में भी बड़े जय्यद उलमा है। मैं समझता हूँ जो इस वक्त सुन्नी उलमा की अक्सरियत ऐसी है जिनमें JUP है, मौलाना शामन नूरानी का ग्रुप है, मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी का ग्रुप है, या दीगर जमाते अहले सुन्नत है, मरकजी जमाते अहले सुन्नत है, इन लोगों को साथ मिलाकर एक ऐसा फोरम तश्कील देना चाहिए जो कौम के सामने बताएं कि हम आपस में भाई भाई हैं, हम आपस के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इस्लाम के दुश्मन है जो कतलेआम कर रहे हैं। इनसे ना इमाम बारगाह महफूज है, न मुसाफिर महफूज है, न नमाजी महफूज है, न जनाजा पढ़ने वाले महफूज है, न कब्रस्तान में पड़े मरीज महफूज है। ये कौन से इंसान है? ये इंसान के रूप में इंसानियत इनसे महफूज नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज इन लोगों के खिलाफ उलमा मशायख को वाज़े पैगाम देना चाहिए और ऐसा फोरम तश्कील देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि तहरीक वादत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान भर के सुन्नी उलमा और मशायख जो है वो इस बात का अवाम में जाकर बता रहे हैं कि दहशतगर्दी कराने वाले कौन है, इनके ताने-बाने कहाँ से मिलते हैं, ये किसके इशारे पर मेरे मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। यकीनन ये शैतान बुजुर्ग अमरीका की साजिश है जो अपने एजेंटों के जरिए, अपने हवारियों के जरिए कभी किसी मुसलमान को मरवाता है, कभी पुलिस के जवानों को मरवाता है, कभी वो पाक फौज के साथ मुतसादिम होते हैं, कराते हैं। यकीनन अगर हुकूमत और उलमा व मशायख मिलकर अवाम के सामने इन दहशत गर्दों के चेहरों को बेनकाब करेंगे तो ये अपने अजायम को भी, अजायम में भी नाकाम होंगे और इनके नापाक अजायम जो है वो खाक में मिल जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इनको ऐसी इबरतनाक सजा मिलेगी कि ये अंधा कोई दहशत गर्द इस किस्म की जरूरत नहीं कर सकेगा।
बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरमा फौजिया शाह साहिबा, अभी मौलाना साहब ने सवाल किया है कि कोई खातून किसी इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर खातून को थप्पड़ मार देती है तो इस्लामाबाद में बैठे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका आज खुद नोटिस ले लेते हैं। और यही सवाल आज से चंद माह कबल जब सानह कोहिस्तान पेश आया था तो उसके बाद भी उलमा और शिया मुसलमानों ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से किया था, तो आखिर वो क्यों, अदलिया क्यों खामोश बैठी रहती इस तरह के संगीन नौयत के वाकयात पर?
देखिए, अदलिया के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें रिजर्वेशन रखती हूँ। और मुस्तकिल हम ये देख रहे हैं कि अदलिया के चॉइसेस जो हैं वो कुछ सामने आने लग गई हैं। वो ये हम नहीं कहते कि वो अक्रॉस दी बोर्ड जो हैं उनके केसेस नहीं आ रहे, उनकी तवज्जो जो है ज़ाहिर है कि एक ये भी जिस तरह इन्होंने बात की कि एक थप्पड़ नज़र आ गया, इसी तरह ये भी नज़र आ गया कि कोई खातून के बैग से कुछ चीज़ें बरामद हो गई, वो भी नज़र आ गया, उसका भी सुबह मोटो हो गया। ये हमारे यहाँ कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है कोई ख़ास किसी तबके को या किस को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या जाती को मफादात है, ये कुछ इस किस्म के सवाल पैदा हो गए हैं। ये तो मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन बहरहाल ये जब अदलिया आज़ादी की बात की जाती है, इतना बड़ा सानिया हो गया है, اس میں تمام اداروں کو عدلیہ سمیت, میں سمجھتی ہوں انتظامیہ, عدلیہ, ہر ایک کو, ایون میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ ہمارے یہاں بے شمار ایسی تنظیمیں بنتی ہیں جس کے ساتھ سپہ لگا دیا جاتا ہے, جس کے ساتھ لشکر لگا دیا جاتا ہے, جو واضح طور پہ آپ کو یہ پہچان دیتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی اس کو متحارب کہہ لیجئے یا کوئی عسکری ایلیمنٹ رکھنے والی کوئی قوتیں. تو اس کو جس کو اگر جس طرح بھی ابھی بات کی مولانا نے بڑی اہم بات کی ہے ان کے, مجھے یہ خوشی ہوئی کہ پاکستان میں اس سوچ کے جو ہیں علماء اکرام پائے جاتے ہیں, جو بڑی وسیع انہوں نے اپنی ایک دائرہ کار انہوں نے رکھا ہے. کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں اگر یہ دہشت گردوں کو اسلام کے نام پہ اگر کوئی مقام ملا ہے تو اس میں سب سے بڑی خامی ہمارے مساجد کی, ہمارے علماء اکرام کی, ہمارے دینی جو ہمارے رہنما ہیں ان کی ہے. کیونکہ وہ بہتر طور پہ نہ تو تربیت کر سکے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ایک محدود طبقے تھا, جس طرح بھی عدلیہ کی بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے محدود کیسز تک خود کو رکھا, اسی طرح ہمارے علماء اکرام نے بھی اپنے آپ کو محدود ایشوز پہ تو بہت زیادہ فصیح و بلیغ جو ہے وہ بات کرتے ہیں, لیکن جو اصل ایشوز ہیں ان پہ وہ بات نہیں کرتے. اسلام کی اصل روح کے بارے میں کبھی وہ بات نہیں کرتے, اسلام کے اصل تقاضوں کے بارے میں, برائیوں کے خاتمے کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے. وہ ایسے ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو جن کا کوئی زیادہ تعلق اسلام سے نہیں ہوتا, یا اگر اس پہ نہ بھی بات کی جائے تو وہ کوئی ایسا مشکل نہیں آتی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کی کسی نہ کسی طرح چھتری میں سینکڑوں کے حساب سے نہ صرف مختلف تنظیمیں ہیں بلکہ مختلف ایجنسیز ہیں جو پوری دنیا کی ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اس میں ایک چیز جو بہت سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا پڑتی ہے, وہ جو علاقے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح یا تو چین سے مل رہے ہیں یا ایران سے مل رہے ہیں. چین اور ایران میں پوری دنیا کی کیا دلچسپی ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت اگر یورپی ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی مخاصمت رکھنے کو آ رہے ہیں, کوئی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, ایران کے ساتھ حملے کی بات ہوتی ہے, ایران کی قیادت کی جانب سے بھی اس خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس پہ حملہ کوئی ہونے کا امکان ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جو ہیں وہاں اس قسم کی صورتحال کیوں پیدا کی جاتی ہے امن و امان کی, کہ تاکہ وہاں اس طرح بے چینی پیدا ہے. لیکن جہاں تک ہم بات کرتے ہیں فرقہ وارانہ اس کی جو صورتحال ہے, ایک چیز جو بہت سنجیدہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تواتر سے یا تسلسل سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ کسی وقت خدا نخواستہ وہ فرقہ واریت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے یہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ کیوں صرف ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. اور کیونکہ یہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں بہت سے واقعات ہوئے, کراچی میں ہوئے, یا یہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ناران کی بات کریں, تو اتفاق ایسا ہے, بدقسمتی ایسی ہے کہ وہاں اہل تشیع جو ہمارے بھائی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مسلسل جو ہے ایک چیز کو رپیٹ کرنے کا مقصد یقیناً یہ ہے, انریسٹ پیدا کرنا, اور ایک کسی وقت بھی ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیوں شیعہ صرف, تو یہ سوالات پیدا کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے استحکام کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سے کوشچنس کا سامنا ہے, اور پاکستان کی صورتحال کوئی اتنی بہتر نہیں کہی جا سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ بہت آسودہ صورتحال ہے. پاکستان کو منظم طور پہ
بہت شکریہ آپ کا محترمہ, بہت شکریہ,
وہ مسلسل کی جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ 1980 سے یہ سلسلہ جاری ہے تو غلط نہیں ہوگا.
بہت شکریہ, ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے محترمہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. مولانا جاوید اکبر ساقی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور سعید الحسن صاحب کے بھی. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی. یقینی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں مسئلے کی بنیادوں کو بہانہ بنا کر, وہ مسئلے کی بنیاد پر نہیں ہے. شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں تفرقہ اور اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تاکہ وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں اور امن قائم نہ رہ سکے. یہاں پر ذمہ داری بجا طور پر حکومت اور علماء عمائدین اور مشائق کی, جیسے کہ ہمارے مہمان ان کا, کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں اور اس پر کنٹرول کریں اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے آگے آئیں۔ ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، ہمیں آپ کے آرا نظریات اور خیالات کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔